अब ये था इख्तमाम। मैं इस आयत को पढ़ रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आसमानों से इख्तमाम हो रहा है, लेकिन ज़रा देखिए कि बदकिस्मत लोग, वो लोग जिनके नसीब के अंदर हिदायत नहीं होती, वो करते क्या है? अफकुल्लमा, पस जब कभी भी, वेन एवर, एनी टाइम, जब भी ये हुआ, क्या जा अकुम रसूलुन, आया तुम्हारे पास। देखिए फिर कुम आ गया। आप चूंकि पहली दफ़ा पढ़ रहे होंगे ना, जो लोग वो भी इस फ़र्क को नहीं महसूस करेंगे कि कहाँ गायब की बात होते होते हाजिर की बात होने लगती है, लेकिन मैं आयत पढ़ती हूँ ना तो मैं फ़ौरन चौंक जाती हूँ कि बात तो हो रही थी उनकी उनकी, और साथ ही कहा तुम, ये नहीं कहा अफकुल्लमा जा हुम रसूलुल्लाह या जा हुम रसूलुम बिमाला, बल्कि कहा जा कुम, तुम्हारे पास आया। इस कुम ने इस कुरान पाक को क्यामत तक के लिए हर इंसान के लिए कर दिया। पढ़ते पढ़ते एकदम आपको कोई कहे ना फिर जब कभी आया तुम्हारे पास कोई रसूल, तो आप चौंक जाएंगे ना। ओ हम तो सोच रहे थे ये बनी इसराइल की शिकायतें लग रही हैं, अल्लाह ने तो तुमको कह दिया। एक तो इसे मदीना के यहूद मुराद है, नबी सल्लम की ज़ुबान से ये आयतें सुन रहे थे, और दूसरा इससे क़यामत तक कुरान पाक को पढ़ने वाले इससे मुराद है, अगर उनको समझ आएगा तो, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं इंसानों तुम्हारा हाल क्या है, जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल आया, किस चीज़ के साथ? बीमा ला तहवा अनफुसुकुम, जिसको तुम्हारे नफ्स पसंद नहीं करते थे, तुम्हारे दिल जिस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अहकाम बड़े सख्त होते थे। तुम्हें तो मीठा खाने की आदत थी, और इन अहकाम में कुछ कड़वा भी खिलाया जाता था। तुम तो दीन का नाम ये समझते थे कि बस थोड़ा सा नाम दीन का लेते रहें और दुनिया भी संवरती जाए और आखिरत भी बने, लेकिन जब अमली तौर पे तौरात आई और आज कुरान पाक खुलता है, तो कई अहकाम ऐसे सामने आ जाते हैं कि अमल करना बड़ा मुश्किल लगता है। अब तुम्हारा तो दिल कहता है नहीं, आज़ादी चाहिए, तुम तो उड़ना चाहते हो ख्वाहिशों की तरह, तुम तो चाहते हो कोई पाबंदी ना हो, कोई रोक टोक ना हो, लेकिन अल्लाह की किताब जब तुम्हारी ज़िंदगी में खुलती है, पाबंदियाँ लगती हैं, अब क्या करते हो? एक तो ये कि बंदा मान जाए कि अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, मैंने मान लिया। अब किसी के पास अब जॉब करते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो निभाते हैं कि नहीं? निभाने पड़ते हैं। कोई ऐसा इदारा नहीं होगा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा कि आपको कहे कि आप हमारे इम्प्लॉई हैं और आपका जो दिल चाहे आप करें, जब चाहें आएँ जब चाहें ना आएँ, करना हो तो कर लें, ना करना हो तो ना करें। ऐसा तो मेरे लिए कोई किसी वॉलंटियर को भी नहीं कहेगा। कमिटमेंट जो होती है वो तो कमिटमेंट होती है। क्या अल्लाह ताला ने इतना इख्तमाम किया इंसानों की हिदायत का, तो क्या फिर उस बातों को सिर्फ पढ़ना ही मकसद था? आज उम्मते मुस्लिमा के साथ भी ये मामला हुआ। कुरान पाक जब खुलता है ना, जिस वक्त खुला वे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका नतीजा क्या होता है कि कुछ बातें नफ्स को बुरी लगती हैं, और यकीन करें ये सिर्फ इब्तदा में होता है, टेस्ट चेंज हो रहा होता है। हम दुनिया में मगन थे, हमें दुनियादारियाँ अच्छी थी, हम 3 घंटे बैठते थे लेकिन वो कुछ और देखने के लिए बैठते थे, उसमें इतना फ़न था कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। अब हमें 3 घंटे बैठना पड़ा, ना बीच में कोई स्लॉट आया, ना बीच में कोई रिफ़्रेशमेंट थी, कुछ नहीं थी, संजीदा ही संजीदा बातें थी, बस ला तहवान फुसुको, बोर होने लगे, नींद आने लगी, थकने लगे, इतनी देर बैठने की आदत नहीं है, कमर दुखने लगी, कहा लिखो तो कहा आदत ही नहीं, हाथ थकने लगे। ये तो सिर्फ पढ़ने के मसले हैं ना, फिर जब हुक्म आते हैं जिसमें ज़रा देखा कि माशरा तो कहीं और ही चल रहा है, कुरान कुछ और कह रहा है, तो बस उसके बाद दो रवैये सामने आए यहूद के, क्या इस तकबर तुम खुद बड़े बने, यानी अल्लाह के हुक्म को तुमने छोटा कर दिया और बड़ाई चाही, और तकबर कई दफ़ा बात हो चुकी कि बतर अल हक की वगमतिन नास, हक जब आपके सामने आ जाए तो उसको छुटला दें और लोगों को हकीर जाने। अच्छे कपड़े पहनने का नाम तकबर नहीं है। तकबर क्या है? कि जब कोई किसी को अल्लाह की बात बताए तो ये कह के झुटला दे, हाँ मेरे बड़े तो नहीं ये करते थे, मेरे ख़ानदान में तो किसी ने ऐसा नहीं किया, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता, यानी कोई उज़र पेश करके एक बंदा अपने आप को क्या कहता है कि बस मैं तो वही करूँगा जो मुझे करना है, जो मेरे वक्त का रिवाज है, मुआशरा देखो किधर जा रहा है, चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की, जैसा देश वैसा भेस। ये आप क्या कह रहे हैं? आप 1400 साल पुरानी किताब पढ़ें और वैसे बने? अब हुआ क्या? तकब्बुर आया ना दिल में, अल्लाह की किताब सामने थी, अब किताब लाने वाले नबी थे, इंसानियत का सबसे आला दर्जा, आला मुकाम, याद रखिए بعض لوگوں نے تصوف کے نام پہ یہ کہا کہ ولایت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے، نعوذ باللہ، لیکن حقیقت یاد رکھیے گا، انسانوں کے درجے ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت آئے گی، اس میں آپ کو سارے لکھا دوں گی۔ یہاں صرف یہ نوٹ کر لیں کہ النبوت، کسی کو نبی بنا دیا جائے، یہ انسانیت کا کمال ہے۔ معصوم الخطا ہوتے ہیں، خطاؤں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ففریقاً کذبتم، تم نے ایک فرقے کو، ایک گروہ کو جھٹلا دیا، کچھ نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا، اور باقی رہ گئے وفریقاً تقتلون، اور باقی گروہ کو تو تم نے قتل ہی کر دیا۔ تقتلون ماضی میں نہیں کہا، قتل تم نہیں کہا، قتل تم ہوتا تو ماضی کا تھا۔ دیکھیے کذب تم یہاں ماضی کا ہے، آپ کو گرامر چونکہ نہیں ساتھ دی جا رہی اس لحاظ سے، لیکن کذب تم کا مراد ہے کہ تم نے جھٹلایا، ہو گیا، واز تھا یہ تمہارا عمل، لیکن اس کے برابری پہ آنا چاہیے تھا فریقاً قتل تم، تم نے قتل بھی کیا اور جھٹلایا، لیکن قتل تم کی بجائے تقتلون آیا۔ یہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے۔ مراد کہہ کہ قتل و غارت کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، سمجھ گئے؟ کسی کو کہنا یہ کام تم کرتے تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں شکر ہے اب تو نہیں کرتی نا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو یہ کہا دے کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں تو اس کا اندر یہ کہ ابھی یہ سلسلہ موجود ہے، اور یہ بات قرآن پاک میں بھی موجود ہے، رہا تاریخ نے یہ بتا دیا کہ یہود کی ہسٹری قتل انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے قتل کی کوشش کی۔ ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور جب آپ گئے تو کھانے میں، چونکہ اس کو پتہ تھا کہ آپ کو دستی کا گوشت پسند ہوتا ہے، اس کے اندر زہر ملا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گوشت پکڑا تو آپ نے کہا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ کہا جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، یعنی اس گوشت نے بتا دیا۔ کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ فوراً بات بنائی، کہا ہاں میں نے جان کے ملایا تھا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو میں مان جاؤں گی کہ آپ سچے نبی ہیں، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ کھائیں گے تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ قتل کی کوشش کی، اللہ کے نبی نے اس کی سزر کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیا، لیکن ایک اور صحابی کے قصاص میں ماری گئی تھی، کیونکہ اسی موقع پہ ایک دوسرے صحابی نے گوشت چکھ لیا تھا اور وہ مر گئے۔ یعنی قتل انبیاء کا سلسلہ تو تھا ہی، آج تک حق والوں کے قتل کے سلسلے جاری ہیں۔ ایک ایک وقت میں انہوں نے 300-400 انبیاء کرام کو قتل کیا۔ آج تو چونکہ میڈیا کا دور ہے نا، کہیں گولی چلتی ہے تو پورے گلوب پہ اس کی خبر پھیلتی ہے، اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود جو ریکٹ میں چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے ایک ایک دن میں سینکڑوں انبیاء کرام کو قتل کیا۔ کرتے کیوں تھے قتل؟ کیونکہ ان کی باتیں ان کی زندگی کے اوپر اثر ڈالتی تھی، ان کو رکاوٹ لگتی تھی۔ جن کو قتل نہیں کر سکتے تھے ان کی تکذیب تو بہرحال کرتے تھے۔ قتل کن کن کو کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ اور تکذیب تو ہر ایک کی تھی، ہر ایک کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کر دیا، کہ نتیجہ کیا تھا کہ نہ ہم کسی کی سنیں گے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، آج کے دور سے تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے آج جب کوئی ہمیں قرآن کی کوئی بات کہتا ہے، یا دین کی کوئی نصیحت کرتا ہے، ہماری زندگی پہ کوئی تنقید کرتا ہے، تو کیا آتا ہے؟ مت سنو ان کی بات، چھوڑو، ہم نہیں سنتے، پیچھے کر دو ان کو۔ یہ عامۃ الناس کا ایک رد عمل ہوتا ہے کہ ہم نہیں سنتے ان کی باتیں، ختم، چھوڑ دو ان کو، چلے گئے۔ کچھ لوگ ذرا ان سے بھی زیادہ ریسورسفل ہوتے ہیں نا، سیاست میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ کیا ان مولویوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، پکڑو ذرا ان کو سزائیں دو، ان کو ٹارچر سیلس میں رکھا جاتا ہے کچھ، اور بعض دفعہ حکومت کے ساتھ مل کے ایسے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا جاتا ہے، قتل کروا دیا جاتا ہے۔ یہ کل بھی ہوتا تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے، اور اپنے اس جرم کو اپنی بائبل میں فخر کے طور پہ لکھتے ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کہ نبیوں کے قتل پہ شرمندہ نہیں تھے، خوش ہوتے تھے۔ ایک تو کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تواریخ کتاب ہے، باب 17 ہے، اس کی آیت 7-10 میں کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت سلیمان کے بعد ریاست بٹ گئی یہودیہ اور سامریہ میں، تو ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ اپنے بھائی کی خلافت مانگی اور حنانی نبی کو جیل میں بھیج دیا۔ اسی طرح حضرت الیاس نے، جن کو یہ ایلیا کہتے ہیں، हज़रत इलियास ने बाल की परस्तिश पर मना किया तो यहूद ने इनको सामरिया के बादशाह के मुशरिक बीवी के कहने पर कत्ल किया और इसका सर पेश किया। यानी ये माशूका थी, गर्लफ्रेंड थी, चूँकि रोकते होंगे, बुराई बदकारी से मना करते होंगे, तो इसने शर्त लगा दी थी कि जब तक मुझे हज़रत इलियास का सर नहीं पेश करोगे मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और उन्होंने उसको खुश करने के लिए नबी का सर काटा और उसको पेश किया। इसी तरह और बहुत सारी बातें लिखी हैं, तवारीख है, बाब 24 है, आयत 21। ज़करिया ने जब बुराइयों पर मना किया तो ऐन हैकले सुलेमान में मुकद्दस और कुर्बान गाह में उनको कत्ल कर दिया गया, यानी संसार कर दिया गया। यर्मिया नबी ने अपनी कौम को समझाया तो फटकार उन पर पड़ी, रस्सियों में बांधकर उनको कैद किया गया, कीचड़ भरे हौज में उनको बंद कर दिया गया ताकि भूख और प्यास से मर जाए। हज़रत यहया को कत्ल करके उनका सर अपनी माशूका को पेश किया। और इन्होंने ये दावा किया है, कुरान पाक ने लिखा है ये दावा, कि न कतल न ईसा न मरियम, हमने ईसा मरियम को कत्ल किया है हालांकि अल्लाह ने बचा लिया। तो कौमों का इंतहाई सवाल ये होता है कि किताब को सुनने की बजाय किताब कहने वाले को रास्ते से हटा दो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने तो सोचा कि उनका रास्ता बंद किया, लेकिन असल में तुमने अपनी हिदायत का रास्ता बंद कर दिया। देखिए, किसी कौम के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस चीज़ पे होता है कि वो दीन वालों के साथ क्या रवैया अख्तियार करती है। इसको अगर छोटे लेवल पे देखें तो आज आम तौर पे लफ्ज़ मौलवी हमारे लिए क्या है, दीनदारों को हम क्या कहते हैं, आज हमारे यहाँ दीन का काम करने वालों का क्या स्टेटस है, उनको लोग किस नाम से पुकारते हैं? वो कहेंगे ये फालतू लोग हैं, ये बेकार लोग हैं, इनको कोई और काम नहीं है, ये हमें ही तंग करते रहते हैं। और जब नबी मारे गए, तकजीब हो गई, किताबों को खलत मलत कर दिया, नतीजा क्या हुआ, हिदायत से दूर हो गए। अब आप देखिए, जुर्म दर जुर्म है, एक जुर्म दूसरे जुर्म का रास्ता खोलता है। तो अगला मरहला क्या होता है कि फिर इंसान अपनी बेदीनी पे फख्र करने लगता है। वो उसका इजहार आयत 88 में कि वक़ालू खुलूबुना गुल्फ, तंज के तौर पे कहते यहूद कि देखो हमारे दिल तो इतने महफूज हैं कि मुखालिफ मजहब का कोई असर ही कबूल नहीं करते। मुसलमानों के सामने आके ढींगे मारते थे, कहते थे तुम्हारी बातों का तो हमें कोई असर नहीं होता। अगर आप इस जुमले को पीछे आयत जो हम 75 में पढ़ चुके हैं ना, क्या फतत माउन यू मिनू लकुम को देख लेना साथ मिला के, कि अल्लाह ताला कहते हैं मुसलमानों तुम क्या ये उम्मीद करते हो कि ये तुम पर ईमान लाएंगे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बताओ ये ईमान कैसे लाएंगे, ये तो इस बात पे फख्र कर रहे हैं कि हमारे दिल बंद हैं। ये बिल्कुल आयत ऐसी मुझे लग रही है कि जैसे कोई बहुत कम अकल हो ना, ना समझ हो, बहुत खुशी से कहे तुम्हें पता है मेरे दिल के सारे वॉल्व बंद हैं। कोई दूसरा उसको देखेगा कि इसको होश नहीं है, क्या कह रहा है, किसी लम्हे भी मौत हो सकती है ना, जिसका दिल बंद है, जिसकी शरियाने बंद हो चुकी। इसी तरह जब लोग दीन से इतने दूर होते हैं कि दीन की बात सुनना भी नहीं चाहते, तो शर्मिंदा होने की बजाय उस पर फख्र करते हैं। जी हम ऐसे दीनदारों से खुद ही अच्छे, हमने देखे हैं दाढ़ियों वाले, हमने देखे हैं दर्स देने लेने वाले, हमें पता है बस ये लोग तो ऐसे ही हैं। आमतुन नास की राय क्या होती है कि दुनिया में जितना बिगाड़ है ना वो बस दीनदारों की वजह से है, इनको ख़त्म कर दो तो हम बड़े खुश हैं, हमें नहीं असर होता तुम्हारी बातों का। कभी कोई कह भी दे ना आओ ज़रा सुनना तो सही। अब वो आए ही थे सिर्फ चेक करने के लिए, हिदायत के लिए तो आए ही नहीं थे, सुनने के लिए कुछ लेना नहीं था, तो वहाँ बैठ के भी तनकीदी नज़रों से देखा, फिर बाद में पूछा अच्छा बताओ कुरान का कोई असर हुआ? ये ठीक है बस, मेरे मुझे तो कोई ख़ास बात नहीं लगी, बस वही बातें थी। अल्लाह ताला कहते हैं जिसको नबियों के पैगाम से कोई फ़ायदा ना हो ना, तो वो समझ ले कि बल लानहुमुल्लाह, अल्लाह ने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। यह लानत का लफ्ज़ आया है, लानत कहते हैं बोध को, दूरी। हम उर्दू में तो लानत का लफ्ज़ सजी और मानों में बोलते हैं ना, लेकिन इस्तलाह में लानत क्या होती है कि जिसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे, यानी रहमत का ऑपोजिट लानत है। या किसी पे अल्लाह की रहमत हो जाती है, और अगर रहमत नहीं हुई ना तो फिर वो रहमत से दूर हुआ, और रहमत से दूर होना लानत है। और वो क्या है कि फिर अल्लाह ताला उनको आने ही नहीं देता, बहुत बड़ा इंतकाम है। देखिए शुरू में एक बंदा इनकार करता है कि मुझे नहीं आना, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं मानना, ये शुरू के दिन होते हैं। अल्लाह ताला मौके देता है, चांस देता है, या ये कर लो वो कर लो, जब नहीं सुनता ना तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें आने ही नहीं देना। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी किताब को सुनो। मैं छोटी सी मिसाल से आपको बात समझाना चाहूँगी। आप किसी को इनवाइट करते हैं अपने घर में, कोई बड़ा है ख़ानदान का, दुनिया भी नाते से देख लें, आपको लगता है कि बहुत दौलत वाले हैं, लेकिन रिश्तेदारी, आप घर में कोई फंक्शन करते हैं, आप उनको बुलाते हैं, तो वो कहते हैं हाँ इनके घर आए, वो नहीं आते। आप फिर किसी बच्चे की शादी करते हैं, आप फिर उनको पैगाम भेजते हैं, ख़त भेजते हैं, और वो तकब्बुर के मारे ना आए, लो हम आप छोटे लोगों में जाएं, हम आपके घरों में आए, या कोई और वजह हो, 3-4 दफ़ा बुलाने के बाद क्या होगा? आप नहीं बुलाएंगी, आप कहेंगे छोड़ो कार्ड ज़ाया करना, और इन्होंने आना तो है नहीं, और ना कभी हमें जवाब में कुछ कहा, ना जवाब दिया, लिहाजा बेहतर है कि ना बुलाओ। ये इंसानों का मामला है ना, इसी को समझने के लिए सिर्फ बात करें कि जब अल्लाह अपनी तरफ किसी को बुलाता है ना, चांस देता है, और हर इंसान की ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मौका ज़रूर आता है, हिदायत की चकाचौंध होती है, चांस मिलता है, एक छोटा सा स्पार्कल, एक लाइट, कोई चांस। किसी को इल्म की महफिल में बुला के अल्लाह करता है कि आओ वहाँ इल्म सीखो, किसी को बीमार करके करता है, वो बीमारी असल में अल्लाह की ज़रूरत को महसूस करवाने का नाम होती है, किसी को दुख में डाल के, किसी को मुसीबत में डाल के, किसी की कोई मौत की सूरत में कोई करीबी सदमा लग जाता है, एक दफ़ा ज़रूर उसका दिल चाहता है कि सच ये है कि अल्लाह की बात को माना जाए, लेकिन जब लोग नहीं आते तो बल्लअनहुमुल्लाह, फिर अल्लाह ताला कहता है पढ़े रहो तुम गंदो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं इधर आने की। तुम्हें कभी किसी से बात करूँ ना, कुछ लोग कहते हैं जैसे मिसाल है, बात होती है, अच्छा जी आप अपनी औरों दोस्तों को भी बुलाएं, चलें कोई फंक्शन है, छपारा पूरा हो रहा है, आप सबको बुलाना चाहें तो बुला लें, फिर आप कहते हैं फलां वो नहीं आते, हम बार बार कहते हैं ना वो नहीं आते हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए कि अल्लाह ही ना आने दे। देखिए जिसको गुस्सा आता है वो कहता है मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगा, तुम कदम तो रख के देखो मेरे घर में। तो ये कैफियत होती है गुनाहों की वजह से, मुसलसल इग्नोरेंस जब होती है ना, फिर बंदा आना भी चाहता है तो अल्लाह तआला कहता है वल्लाहु यहूलु बैनल मरी व कल्बी, सूरह अनफाल की आयत है कि अल्लाह बंदे और उसके दिल के बीच में दीवार बन जाता है, हायल बिल्कुल नहीं आना तुमने, और ये बहुत बड़ा इंतकाम होता है। अल्लाह ना करे हम में से कोई इस इंतकाम की तरफ आ जाए। आप एक दफ़ा कहें ना कि नहीं अब 88 आयतें पढ़ ली हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हैं, अब कब तक चलेगा, छोड़ो मैं अब बस शौक पूरा हो गया, चलते हैं वापस जॉब पे, चलते हैं जो काम कर रहे थे, आज सोचें कल आप नहीं आ सकेंगे। इस सोच से भी इतना अल्लाह नाराज़ होता है कि वो कल ऐसा होगा आप आने लगेंगे, कोई मेहमान आ जाएगा, आप आने लगेंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, आप नहीं पहुंच सकेंगे, आप कहेंगे मैं तो तैयार थी, नहीं कल आपने जो सोचा था अल्लाह ने आज उसके इंतकाम में आपको इस खैर की जगह से महरूम कर दिया। नेकी के मौके का हाथ से छीनना ये अल्लाह की लानत की निशानी होती है। लिहाजा क्यों का भी कुफ्रीहिम, साथ ही नोट किए जी, कुफर की वजह से, कुफर क्या होता है, नाशुक्री, अनग्रेटफुलनेस, पहले ख्वाहिश करता है बंदा ये चीज़ हो, जब होती है तो कीड़े निकालने लगता है, और जो मिलता है उसको भी छोड़ देता है ये सोच के कि वो क्यों नहीं मिल रहा जो मैं सोच रहा हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे नाशुक्रों का हाल क्या है कि फिर इनको मैं दूर ही कर देता हूँ। फ़क़लीलम्मा युमिनून, बस बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं, इसका एक ये भी तर्जमा ठीक है, और बहुत थोड़ा है जो वो ईमान लाते हैं, यानी लोग बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। आज देख लीजिए आप, आपको दुनिया में ईमान वाले और शौरी ईमान वाले ज़्यादा दिखते हैं या कुफर पे और नाफरमानियों पे? और थोड़ा ईमान लाते हैं, यानी जो ईमान लाए हुए हैं वो भी बहुत थोड़ा लाए हुए हैं। खुलासा क्या हुआ कि सारी बात सुन के उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, अब ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बिल्कुल पीछे कर देंगे। अच्छा अब यहाँ तो बात हो गई उनके हाल की, प्रेजेंट की, अब अल्लाह ताला उनको उनके माजी की कुछ बातें याद दिलाता है, वो क्या, वलम्मा जाअहुम किताबु मिन इंदिल्लाह, और जब पहुंची इनके पास किताब अल्लाह की तरफ से, कौन सी किताब है, यहाँ लिखेंगे कुरान पाक। कैसी है कुरान पाक की सिफत क्या है, मुसद्दिकुल लिमा माहुम, तस्दीक करने वाली है उसकी जो इनके पास है, माहुम, हुम कौन है, यहूद मदीना के, और लीमा क्या है, तौरात, बड़ी बारीक सी ज़मीरें हैं इसकी। फिर बोलती हूँ मुसद्दिक क्या है, इधर कुरान पाक की सिफत, पीछे जो किताब था ये कुरान था, कुरान की सिफत क्या है कि ये सच्चा करती है किसको, लीमा, जो माँ के नीचे आप लिखिए तौरात, वो तौरात जो इनके पास, मा हम इनके पास, हम कौन है, यहूदे मदीना इधर, कि कुरान जब आ गया तो ये किताब कुरान को, इनके दीन को कोई रिजेक्ट तो नहीं करती थी, ये तो वेरीफाई करती थी, ये तो तस्दीक करती थी, तौरात की सही बातों की तस्दीक कुरान पाक में मौजूद थी। वकानु मिन कबलू, और थे वो कौन, यहूद मदीना के, ख़ास तौर पे लिखिएगा, इससे पहले, किससे पहले, कुरान पाक के नज़ूल से पहले। यस्तफ्तहून अलल्लज़ीन कफरू, फतह मांगते थे काफिरों पर। काफिर यहाँ कौन है, अरब के, यानी मदीना के ख़ास तौर पे और मक्का के कुफार पे। फिर क्या हुआ, फलम्मा, पस जब, जा अहुम, आया उनके पास, किनके पास, यहूद के पास या और सारों के पास, मा जो अरफू, उन्होंने पहचान लिया, किन्होंने पहचान लिया, यहूद ने पहचान लिया, मदीना के यहूद ने किया क्या, कफरू भी, इनकार कर दिया, ना माने, क्यों ना माने, तासुब की वजह से। तासुब क्या होता है, अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। नतीजा क्या है, फलानतुल्लाही अलल काफिरीन, बस अल्लाह की लानत है काफिरों पर। अब इस आयत को समझने से पहले आपको थोड़ी सी बात वाजे हो करनी होगी मुझे, और वो क्या है, हम देख चुके बड़ी डिटेल से पिछले रुकू में कि मदीना में यहूद के तीन गिरोह थे, बनू नज़ीर, बनू कैनका और बनू कुरैज़ा। नाम ना भी याद रहे, लेकिन ये तीन कबीले थे। आपको बताया कि ये मदीना में रहते नहीं थे, ये हिजरत करके आए हुए थे। देखिए कि यहूद बुनियादी तौर पे मुल्क शाम के रहने वाले थे, ये आप बात याद कर लें, जहन में आपके रह जाए, सीरिया मदरलैंड था यहूद का, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहीं से रहते थे। बीच में कुछ अरसा इनकी अक्सरियत जो थी वो मिस्र में गई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, उसको भी अभी छोड़ दें, लेकिन इनकी आपस में इतनी मजहबी जंगें हुई, इनकी इतनी लड़ाइयाँ हुई, आज भी अगर आप ज्यूस की हिस्ट्री को जाके पढ़ें तो सैकड़ों के एतबार से मजहबी लड़ाइयों के नाम मिलते हैं। आपने सलीबी जंगों का नाम सुना, हिस्ट्री में इनकी और नसारा की, क्रिश्चियन और ज्यूज़ की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई कि बिल आखिर यहूद जो थे वो तितर बितर हो गए, बिखर गए, ना घर के रहे ना बाहर के। उस वक्त इनके अपने मुल्क शाम में भी इनके लिए ठिकाना नहीं रहा, अब इनको कहीं माइग्रेट होना था। आज के दौर को सोचिए, जैसे चंद साल पहले अफगानिस्तान में लड़ाई हुई, जंग हुई, तो मुहाजिर बन के कोई पाकिस्तान चले गए, कोई ईरान चले गए, ऐसे ही होता है ना, जब अपना मदरलैंड खाली नहीं होता तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब यहूद के सामने ये सवाल था कि किधर जाए। अब तसव्वुर में लाएं कि मक्का और मदीना तो ऐसे ही है जैसे डेजर्ट, आज अफ्रीका का कोई ऐसा सहरा है जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं और वहाँ कुछ खाना पीना भी नहीं, कोई अल्लाह ना करे किसी वेस्टर्न कंट्री में कोई ख़राबी हो तो वहाँ से उठ के ऐसे जंगल में जाना चाहेगा कि जहाँ है ही कुछ नहीं। लेकिन आप सोचें, यहूद वहाँ से उठ के मुल्क शाम से मक्का और मदीना में क्यों आए, क्योंकि इनको पता था अपनी किताबों में पढ़ने के बाद कि अब वो सारे असरात शुरू हो गए हैं जो आखिरी नबी के आने के दौर में होंगे, और इनकी किताबों में ये लिखा था कि वो नबी अरब में आएगा, मक्का और मदीना के करीब आएगा। इन्होंने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि उस नबी के आने से पहले ही उस जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो ही उसका ज़हूर होगा उसके साथ हम मिलेंगे, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरू, सूरत मायदा में आता है आगे, हम खूब उसका साथ देंगे और इन काफिरों की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब हुआ क्या कि ये मदीना में आ गए, मदीना के जो नेटिव्स थे वो सारे काफिर थे, उस वक्त नॉन मुस्लिम थे। जब कभी यहूद के साथ उनका मुकाबला होता, और यहूद ऑफ कोर्स थोड़े थे, हिजरत करके जो लोग आते हैं वो उस मुल्क की टोटल आबादी से तो थोड़े ही होते हैं ना, अब जब कभी औस और खजरत से इनकी लड़ाइयाँ होती ना तो ये उनको धमकी देते थे, कहते देखना थोड़े दिन ठहर जाओ, वो नबी अब आने वाला है जिसकी खबर हमारी किताबों में है, जो ही वो आ जाएगा हम उसके साथ मिलके खूब तुम्हारा मुकाबला करेंगे और हमें फतह हासिल होगी। और बाज़ रिवायतों में यहाँ तक आता है कि तौरात का वो सफ़ा खोल लेते थे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर थी, और जब कभी किसी जंग के मौके पे इनका सामना किसी से होता है तो वो सफ़ा खोल के अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह इस नबी के जिसके आने का तूने वादा किया है उसके ज़रिए से हम दुआ करते हैं कि हमें इस जंग में काफिरों पे फतह दे दे। उनको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि वो नबी आए और हमें ऑर्गेनाइज करे और हम उसके साथ मिल के इस नॉन मुस्लिम कल्चर का कह लें या इस गैर इस्लामी ज़िंदगी का ख़ात्मा करें। अब होना क्या चाहिए था, नबी आता तो हाथों हाथ लेते, जी वारे सदके जाते। ये ऐसे जैसे मसला आप देखिए कि आपका कोई ऐसा गांव है जो बिल्कुल शहर से दूर है, उधर कोई भी नहीं है पढ़ने पढ़ाने वाला, कोई आपको कह दे कि नहीं 5 साल के बाद वहाँ कोई टीचर आ जाएगा, तो आप पहले से इंतज़ार करना शुरू होंगे ना, अच्छा जब आएगा तो हम उसके साथ मिलेंगे, हम ये करेंगे, सब तैयारी करें। हाँ, और जब 5 साल बाद वो आए तो सबको क्या करना चाहिए, उसको खुशी खुशी ले क्योंकि हमारे गाँव में कोई आ गया। हाँ, लेकिन आप क्यों, अरे ये तो वो दूसरे फिरके से आ गया है, ये तो दूसरी जमात से आ गया, हमने ये तो सोचा था कि आएगा इधर कोई टीचर, ये नहीं सोचा था कि ये किसी दूसरे गिरोह से आएगा। यही मुश्किल इनको पड़ गई, कहेंगे ओ हो सो सो सॉरी सॉरी रॉन्ग नंबर, हमने सोचा था ये बनी इसराइल से आएगा, ये तो बनी इस्माइल से आ गया। पहली बात, वही सगे सौतेले का फ़र्क, तासुब आ गया। दूसरी बात ये थी कि जो दीन उस नबी के ज़रिए आया उसने सारे पोल खोल दिए इनकी तहरीफ़ात के और इनकी तब्दीलियों के, लीडरशिप जाने लगी। बस उस वक्त अगर मैं सोचती हूँ, मैं कभी ये सारी आयतों को बिग सिनेरियो में देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कितने को लोग थे उस वक्त मदीना में जब अल्लाह के नबी आए, यहूद की सूरत में मुट्ठी भर चंद 100 लोग थे, अगर वो अपने दिल खोल लेते ना, आप सोचिए इस जुमले को, अगर वो वुसअत कलबी का मुजाहरा करते दिल खोल के, अल्लाह ताला कहते मा अरफू, जबकि पहचान भी चुके थे, पता था उनको ये नबी सच्चा है, और वो एक्सेप्ट करते अल्लाह के नबी को दिल से लगाते, आज जितनी इस्लाम की खैर है ये किनके पलड़े में जाती, उन यहूद के नाम जाती। काब बिन अशरफ भी कोई खलीफा हो सकता था अल्लाह के नबी के बाद, मैं सिर्फ बात समझाने को कह रही हूँ। दिल खुलते नहीं है ना तो जो खैर मिलनी होती है वो भी ले लेते हैं, ये दिल तो बंद, पहले ही कह दिया ना कुलूबू न गुल, देखिए बंद बर्तन में आप कुछ डाल सकते हैं, डलने के लिए खोलना पड़ता है। और जो लोग अपने सीने घोट लेते हैं ना, जो इतने तासु परस्त हो जाते हैं कि वो किसी एक जर्रे को उसमें जगह ना दे, वो फिर अंदर ही घुट के मर जाते हैं। इसीलिए आज देखिए दुनिया में इस वक्त सबसे कम आबादी वाला ये गिरोह है, ये आज हमारे जहनों पे इस्लाम का जो खौफ और रोब है ना, ये झूठा है। पूरी दुनिया की आबादी का 2-3-4% गालिबन होंगे, अगर इससे कुछ कम ज़्यादा है, ये इतने थोड़े हैं। इस वक्त भी अगर इनका कोई नाम है तो वो पीछे बड़ी ताकतों की वजह से है। मैं सोचती हूँ काश उन लोगों का दिल खुल जाता, हुई बिन अख्तब का दिल खुल जाता, काश काब बिन अशरफ का दिल खुल जाता, ये सीने से लगा के तो देखते अल्लाह के नबी को। कल हर मौके पे उनको अपोज ही करना पड़ा। नबी सल्लम की 10 साल नबवी ज़िंदगी में यहूद ने अपनी पूरी एनर्जियाँ लगा दी कि अल्लाह के नबी का रास्ता रोक लें, हुआ क्या, सिर्फ दूसरे तीसरे साल ही बनू नज़ीर को उठा के बाहर फेंकना पड़ा। देखिए हक के मुकाबले में कोई नहीं रुकता, सिर्फ 8 साल, 8 से भी कम, खैबर की जंग गालिबन सन 7 हिजरी में हुई अगर मैं नहीं भूल रही, सिर्फ 7 साल में यहूद से पाक हो गया था मदीना, और आज कोई यहूदी या नसरानी मक्का और मदीना की हद में नहीं आ सकता। कितना बड़ा इंतकाम है, थोड़े से लोगों की गलती ने इतनी नस्लों को बर्बाद कर दिया, ये कितना बड़ा पैगाम है। अल्लाह ताला कहते हैं कानू मिन कब्ल यस्तफते होना, पहले मदद की दुआएं मांगा करते थे, जब नबी आ गया तो मानने की बजाय तुमने उसके रास्ते रोकने शुरू कर दिए, जाओ फिर फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, ना शुक्रों का यही हाल है। अब वो रोएं, अब वो पीटें, अल्लाह के नबी ने क्या कर दिया, क्यों आगे हमारी बनी बनाई खेल ख़त्म कर दी, उनको भी नहीं पता नुकसान हमारी गलती के, ना शुक्री, कुफर, तासुब। तासु पे बहुत ज़्यादा यानी इन आयतों में बात होती है, और आगे भी एक जगह आएगी तो वहाँ आपको कुछ हदीसें बाकायदा टेक्स्ट के साथ कोट कराऊंगी कि ये कितनी बड़ी बुराई है कि किसी को सिर्फ इसलिए अच्छा कहना कि वो हमारा है। दौरे जाहिलियत का एक शायर है, उसका शेर भी है, तो वो कहता है कि मैं उस कबीले से हूँ और अगर वो हिदायत पाएंगे ना तो मैं भी हिदायत पाऊँगा, और अगर वो गुमराह होते हैं तो मैं भी गुमराह होऊंगा क्योंकि मैं उस कबीले से हूँ। इसको तासुब कहते हैं, अपना है ना ये तो बस, बुरा भी है तो भी अच्छा है, और ये गैर अच्छा भी, लेकिन गैर इसलिए इसलिए हम इसको अच्छा नहीं कहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं बे समझ तरऊ बिही अनफुसहुम, कितना ही बुरा है वो जो उन्होंने बदले में बेचा अपने नफ्सों को, क्या कीमत लगाई इन्होंने अपनी, बेच दिए, बुरी चीज़ है जिसके बदले में बेचा उन्होंने अपने आप को। क्या क्या है इनका वो? यकफुरु, कुफर कर दिया। किसका? बीमा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया। ये अल्लाह ताला का कमेंट है। अफसोस है इनके हाल पे कि बड़ी बुरी शय है जिसके इवज़ इन्होंने अपनी जानों को फरोख कर दिया। ये क्या चीज़ थी बुरी चीज़? ये दुनिया के हकीर से फ़ायदे, इनकी लीडरशिप, हकीर से फ़ायदे, इनकी चौधराहटें, इनकी मसंदें, इनके एजाजात, इनके पाँव की जंजीरें बन गए। इन्होंने आखरत की फलाह को छोड़ दिया और दुनिया की छोटी सी चीज़ों को ले लिया। हुआ क्यों ऐसा? उसकी वजह हाईलाइट कर लीजिए, लफ्ज़ बगजन। बस एक लफ्ज़ है, इसकी इधर और इधर आप कॉमा लगा सकते हैं। ये एक लफ्ज़ है कि इनके इस सारे रिस्पॉन्स की वजह क्या थी? बगी, हसद, सरकशी, ज़िद आ गई। बगी कहते हैं ज़िद को। क्या ज़िद थी? अई यु नज़िल अल्लाहु मिन फ़तलिही अला मन यशाउ मिन इबादी। इनको हसद क्या था कि अल्लाह ने ये नबूवत का फ़ज़ल मोहम्मद रसूलुल्लाह पे क्यों कर दिया, जो कि बनी इसराइल से बाहर थे, बनी इस्माइल में से थे। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी मर्ज़ी, ये मेरा फ़ज़ल है। मैंने कोई दीन सारा बनी इसराइल के लिए तो नहीं रखा हुआ कि अगर 4,000 पैगंबर इसमें आगे भी आ चुके थे तो 4,001 नंबर का जो पैगंबर था वो भी इसी में से आएगा। लिहाजा इन्होंने इस कानून को क्यों नहीं समझा कि अल्लाह अपना फ़ज़ल किसी को भी दे। देखिए, अल्लाह ना तो नामों पे किसी को देता है, ना स्लोगन से मुतासिर होता है। अल्लाह ने हिदायत का काम करवा के रहना है। कोई शख्स अगर दुनिया में ये कहे ना, मैं उस दिन गाड़ी चलाऊंगी जिस दिन रोड पे सिर्फ मेरी गाड़ी होगी, तो वो तो हड़ताल के दिन होगा। आप जाएंगे भी तो आपका काम कोई नहीं होगा। ज़रूरत है इस बात की कि इंसान अपनी सलाहियतों को पहचाने। देखिए, इस दुनिया में बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना अगर आप इस सोच पे देखें ना, तो हर बच्चा ये चाहेगा मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ, ताकि मेरी माँ की तवज्जो किसी और पे ना आए। ऐसे ही है ना, माँ मेरी ही रहे, ये बाप मेरा ही रहे। लेकिन आप इकलौते बच्चों को ज़रा सा बड़ा होता देखें, 8-9 साल का, तो एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। आई एम अलोन, आई एम अलोन, आई एम अलोन। लेकिन दिल चाहता है कि सारी मोहब्बतें मैं लूट लूँ, और एक को ज़्यादा मिल जाती हैं, ये भी धोखा है। बहरहाल, अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके इस बुरे फेल का नतीजा क्या हुआ? फबाउ बी गदब इन अला गदब, ये गज़ब के ऊपर गज़ब का शिकार हुए। बुख्त नसर ने इन पे हमले किए, अभी संभल नहीं पाए, टीटस ने इन पे हमले किए। आपने ऐसी हिस्ट्री में जंगों के नाम पढ़े होंगे कि लोहे की भट्टियों में यहूद को जलाया गया था। हॉलोकॉस्ट का नाम सुना आप लोगों ने? ये उसी दौर की कहानी है। यानी यहूद के ऊपर अल्लाह ने इतने जालिम किस्म के बादशाहों को रखा कि इन्होंने इनकी ईंट से ईंट बजा दी। उसी लड़ाइयों के दौरान ये मदीना में माइग्रेट किए थे। ऐसे इलाके आपके भी बिल्कुल करीब के हैं कि जहाँ वो एक शख्स का नाम जो है वो गाली बन चुका है इस वक्त, तो उन लोगों के लिए उसने यहूद के साथ क्या हालात किए थे। आप हिस्ट्री पढ़ा करें, इब्रत की खातिर पढ़ें, अपनी पढ़ें, नॉन मुस्लिम्स की पढ़ें। और बेहतरीन हिस्ट्री जो है वो कुरान में, इन नबियों के किस्सों में और कुरान पाक की तफसीरों में लिखी हुई है कि गज़ब पे गज़ब टूटे। अभी सीधे नहीं हो पाए तो दूसरे गज़ब में आ गए। अल्लाह ने इनको पीस के रख दिया। क्यों? वलिल काफरीन अज़ाब मुहीन, काफरों के लिए तो ज़िल्लत का ही अज़ाब होता है। सज़ा किस बात की थी? कुफर की। कुफर क्या था? नशुक्री। नशुक्री किसकी थी? नबी की, जिसकी आमद के लिए दुआएं मांगा करते थे, उसी को पीछे कर लिया। देखिए, यह लफ्ज़ बगी को भी समझने की ज़रूरत है। दीन में जब भी किसी के इख्तलाफ शुरू होता है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह जो होती है ना, वो बगी होती है, ज़िद होती है। इस तरह से होता है कि कोई इंसान किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसलन, हर इंसान के अंदर अर्ज है डोमिनेंट होने की। ये डोमिनेंसी की अर्ज जो है ना, यही बाद में बगी बन जाती है। बस उफक पे मेरा नाम दिखे, इस स्क्रीन के साथ किसी दूसरे की स्क्रीन ना लगे, ये ख्वाहिश इतनी बढ़ती है कि इंसान फिर दीन को भी पीछे डाल के अपने नाम को बचाने लगता है। ऐसा करने वालों को अंजाम क्या है? अजाब मुहीन। देखिए, मुहीन का लफ्ज़ इहानत से, ऐसा अजाब जिसको देख के कराहत आए। मुसलमानों पे भी अल्लाह की तरफ से पकड़ आती रही है। कुछ मुसलमानों को भी जहन्नुम में जाना पड़ेगा, लेकिन उनको रुसवा नहीं किया जाएगा, वो उनको गुनाहों से पाक करने के लिए होगा। लेकिन इस कौम के अजाब के साथ अल्लाह ताला ने जिल्लत की बात की,